بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سمعین. پیش خدمت ہے ابن صفی کی جاسوسی دنیا، ناول نمبر 104، مہلک شناسائی، تحریر ابن صفی اور پیشکش ارتبہ آڈیو لائبریری. یہ ناول دو سلسلوں پر مشتمل ہے، نمبر 1 تباہی کا خواب اور نمبر 2 مہلک شناسائی. دیگر معلومات یا مزید کتابوں کے لیے اس نمبر پہ رابطہ کریں 0321-213-8225 یا وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.kartaba.org www.qurtaba.org. تو آئیے سنتے ہیں ناول مہلک شناسائی پارٹ 1.
جاسوسی دنیا نمبر 104، مہلک شناسائی، دوسرا حصہ، پیش رس. آج میں خدا کو حاضر ناظر جان کر آپ کو یہ اطلاع دے رہا ہوں کہ میں نے حابیل قابیل والی ٹریجڈی سے پہلے کوئی جاسوسی ناول نہیں لکھا تھا، لیکن کوا بچارہ آج تک پشیمان ہے کہ اس نے حضرت آدم کو مٹی کھود کر دفن کر دینے کا فن کیوں سکھایا. کوے کا خیال ہے کہ اس کی اسی غلطی کی بنا پر آج اولاد آدم آدمی ہی کو زندہ دفن کر دینے کے فن میں طاق ہو گئی ہے. اوپر کی عبارت کا مفہوم معاشیہ کو سباق سلیس اردو میں لکھیے اور اردو ادب کے ان چودھریوں کو روانہ کر دیجئے جو یہ فرماتے ہیں کہ جرائم کی تعداد میں اضافہ ہونے کا سبب جاسوسی لٹریچر ہے. یقین کیجئے کہ وہ آپ کے اس حل شدہ پرچہ امتحان کی رسید تک نہ دیں گے، کیونکہ پرچہ ان کا اپنا سیٹ کیا ہوا نہیں ہے، یا ہو سکتا ہے وہ آپ کو لکھ بھیجیں کہ حابیل اور قابیل والی ٹریجڈی غلط فہمی کی بنا پر ہوئی تھی. وہ دونوں سمجھے تھے کہ اب کوئی دوسری عورت پیدا ہی نہ ہوگی، لیکن وہ کبھی اس کا اعتراف نہ کریں گے کہ سارے ہی جرائم کسی نہ کسی غلط فہمی کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں. مستقبل سے مایوسی غلط فہمی ہی کی پیداوار ہے اور یہی آدمی کو جرائم کی طرف لے جاتی ہے. مستقبل سے مایوس ہو کر یا تو آدمی جرائم کرتا ہے یا پھر کسی ایسے کرنل فریدی کی تلاش میں ذہنی سفر کرتا ہے جو قانون اور انصاف کے لیے بڑے سے بڑے چہرے پر مکہ رسید کر سکے، اور یہی تلاش ہیروئزم کی کہانیوں کو جنم دیتی ہے. خیر چھوڑیے، یہ سب بھی ان باتوں کو مجھ سے زیادہ سمجھتے ہیں، لیکن اس موضوع پر اظہار خیال کے لیے یہ ارزاں ترین نسخہ ہے کہ لٹریچر نشانہ ملامت بنایا جائے. بات ہونی چاہیے تھی مہلک شناسائی کی، لہٰذا اب ادھر آئیے، فریدی کی کہانیوں میں آپ اسے منفرد پائیں گے. یہ کہانی لکھتے وقت مجھے بے شمار مشورے موصول ہوئے، میں نے کوشش کی ہے کہ ان پر عمل کروں. اب فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ابن صفی، 27/11/1968، صفحہ نمبر 141، علامتی شاعری. بات ملٹری انٹیلیجنس تک جا پہنچی تھی اور ان دونوں کو ہیڈ کوارٹر میں طلب کر لیا گیا تھا. آج کرنل قادری کے سامنے پیشی تھی. کرنل فریدی نے بجھے ہوئے سگار کو ڈسٹ بن میں ڈالتے ہوئے کیپٹن حمید سے کہا، تم اپنی زبان بند رکھو گے، جنرل صاحب اتنے خوبصورت ہرگز نہ ہوں گے کہ مجھے اپنی زبان کھولنے کی ضرورت پیش آئے. سنجیدگی سے سنو، تم اپنے بیان میں اتنے ہی حالات تک محدود رہو گے جن سے دو چار ہوئے تھے. ظاہر بال بچے دار تو ہوں نہیں کہ جنرل قادری کو منیمیا کے آشوب چشم کے تشویشناک حالات سنانے بیٹھ جاؤں، اور اس سے کسی بات پر الجھنا مت. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، اس کی کسی بات کی تردید نہ کرنا. جہاں اس کی نوبت آئے تم اس بات کو مجھ پر چھوڑ سکتے ہو. مثلا اگر وہ مجھے گدھا کہے تو میں آپ کی طرف دیکھنے لگوں. فریدی اسے تیکھی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا، پچھلے مہینے کی بات ہے، اس کا ایک ماتحت دوران گفتگو میں کسی طرح آلو کے ذکر کا گناہگار ہو گیا تھا. قادری نے پوچھا، تم نے آلو کا درخت دیکھا ہے؟ اس نے کہا، جناب عالی، درخت نہیں پودا. اس نے کہا، درخت اور پودے کا فرق سمجھاؤ. وہ ہکلایا اور قادری نے بھرپور مکہ اس کے منہ پر رسید کر دیا. تین دانت ٹوٹ گئے تھے اس کے. کیا وہ میرے ساتھ بھی اس قسم کا برتاؤ کر سکتا ہے؟ کریک ہے. لیکن یہ بات ملٹری انٹیلیجنس تک کیسے آ پہنچی؟ مجھے رپورٹ دینی تھی، دے دی. کیس ادھر ریفر کرنے میں میرے مشورے کو دخل نہیں. جیلال شاستری والا کیس بھی ادھر سے متعلق تھا، لہٰذا یہ معاملہ بھی ادھر ہی آیا. او وہ دیکھیے، وہ کرنل ادھر ہی آ رہا ہے، شاید جنرل قادری کا اسسٹنٹ ہے، حمید نے بجھا ہوا پیپ جیب میں ڈالتے ہوئے کہا. کرنل فریدی پلیز، آنے والے نے ان کے قریب پہنچ کر کہا. یس تھینک یو، فریدی اٹھتا ہوا بولا. اور پھر وہ جنرل قادری کے روم میں آئے. حمید نے اس پر تفصیلی نظر ڈالی تھی. وہ ایک بڑی میز کے پیچھے بیٹھا انہیں گورے جا رہا تھا. بدنمائی کی حد تک لہیم شہیم آدمی تھا. موٹی سی گردن پر شفاف کھوپڑی والا چہرہ عجیب بھی تھا اور ڈراؤنا بھی. حمید نے سوچا کہ اس کے ماتحت اس کا سامنا کرنے سے کتراتے ہوں گے. ٹوڑی کی بناوٹ اذیت پسند طبیعت کی غماز تھی. آنکھیں چھوٹی اور چمکیلی تھیں. حمید کی طرف ہاتھ اٹھا کر وہ گرایا. تم کرنل فریدی ہو؟ یہ سر. حمید نے ایڑیاں بجائیں. فریدی دم بخود رہ گیا. بیٹھ جاؤ, وردی میں کیوں نہیں آئے؟ حمید اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتا ہوا بولا, آنریری کرنل ہوں جناب. فریدی کھکھارا لیکن حمید کی کھوپڑی پر جیسے برف جم گئی تھی. مجھے علم ہے جنرل قادری کا لہجہ حقارت آمیز تھا. حمید تنا بیٹھا رہا. فریدی اس سے چند قدم پیچھے خاموش کھڑا تھا اور جنرل قادری نے اس کی طرف توجہ تک نہیں دی تھی. تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس جھیل میں ریڈیم کا وہ ذخیرہ موجود ہے؟ جنرل قادری نے میز پر گھونسا مار کر پوچھا. وہ پستول نما کیمرہ اور وہ ریل. اور وہ آدمی اسٹیفن بروس؟ جنرل نے تنزیہ لہجے میں کہا. جی ہاں وہ بھی, حمید مردسی آواز میں بولا. وہ کہاں ہے؟ انڈونیشیا چلا گیا. اس کے نکل جانے سے پہلے یہ معاملہ کیوں نہیں ریفر کیا گیا؟ اس کا جواب ہمارے ڈی آئی جی صاحب ہی دے سکیں گے. اتنی عقل میں بھی رکھتا ہوں. جنرل نے پھر میز پر گھونسا رسید کیا. تو پھر آپ ان سے پوچھئے. حمید نے بکھلائے ہوئے انداز میں فریدی کی طرف اشارہ کیا. یہ کون ہے؟ جنرل نے فریدی کو گھورتے ہوئے پوچھا. پھر یک بیک نہ صرف کرسی چھوڑ کر اٹھ گیا بلکہ اٹھتے اٹھتے میز پر ایک اور گھونسا بھی رسید کر دیا. او اٹ از نتھنگ جنرل, فریدی مسکرا کر بولا. میرا اسسٹنٹ آپ کی شخصیت سے بہت زیادہ مرعوب ہو گیا ہے. جنرل نے پھر حمید کو گھور کر دیکھا اور حمید بڑی پھرتی سے اٹھا اور فریدی کے قریب جا کھڑا ہوا. یہاں صرف ایک کرسی تھی. فریدی آگے بڑھا اور جنرل سے مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا. جنرل نے مسافے تو کیا لیکن حمید کو بدستور گھورتا رہا. لیکن پھر شاید اپنے ہاتھ پر فریدی کی گرفت ہی محسوس کر کے اسے دوبارہ اس کی طرف متوجہ ہونا پڑا تھا. اس نے غالباً سن رکھا تھا کہ آپ اپنی کسی بات کی تردید سننا پسند نہیں کرتے. فریدی پرسکون لہجے میں بولا. بکواس ہے, بیٹھ جاؤ, اس نے کہا اور خود بھی ایک جھٹکے کے ساتھ بیٹھ گیا. حمید اٹینشن ہو گیا تھا. تمہاری موجودگی غیر ضروری ہے, جنرل حمید کی طرف ہاتھ اٹھا کر ڈھاڑا. حمید سلوٹ کر کے ایڑیوں پر گھوما اور نکاسی کے دروازے کی طرف مارچ کر گیا. باہر نکل کر اس نے دو تین لمبی لمبی سانسیں لی تھیں اور پھر اسی کمرے میں واپس آیا تھا جہاں کچھ دیر پہلے وہ دونوں بیٹھے رہے تھے. اس نے پائپ میں تمباکو بھرتے ہوئے سوچا. عجیب ویشی آدمی معلوم ہوتا تھا. کسی زمانے میں وہ خود بھی فوجی زندگی بسر کر چکا تھا لیکن کبھی ایسے خونخوار آفیسر سے سابقہ نہیں پڑا تھا. آدمی کیا تھا؟ بھپرا ہوا گوریلا تھا لیکن اس نے فریدی کے رویے میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں محسوس کی تھی. ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی اداکار کی فنی صلاحیتوں کا جائزہ لینے کے لیے وہاں گیا ہو. حمید پائپ سلگا رہا تھا کہ وہی کرنل پھر کمرے میں داخل ہوا جو انہیں جنرل کے آفس میں لے گیا تھا. حمید نے عہدے کے لحاظ سے احتراماً اپنا پائپ چھپانا چاہا. او نو نو ڈیئر, کیری آن سموکنگ, کرنل ہنس کر بولا. میرا نام اے ایچ عشقی ہے, اس نے مسافر کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا. میں ساجد حمید ہوں جناب, حمید نے گرم جوشی سے مسافر کرتے ہوئے کہا. آئی نو تعریف سن چکا ہوں تمہاری. بہت زندہ دل آدمی ہو, ادبی ذوق بھی رکھتے ہو. حمید کی جان نکل گئی آخری جملے پر. نام ہی سے شاعر معلوم ہوئے تھے یہ حضرت. اب کیا ہوگا؟ تم پائپ پی سکتے ہو کیپٹن حمید, کرنل صاحب اس کا شانہ تھپک کر بولے. بہت بہت شکریہ جناب. بیٹھو بیٹھو, میں جانتا تھا کہ جنرل قادری تمہیں رخصت کر دیں گے. وہ ایک وقت میں اپنے قریب ایک ہی آدمی کی موجودگی پسند کرتے ہیں. تم نے صرف ایک ہی کرسی ان کی میز کے سامنے دیکھی ہوگی. جی ہاں. چلو کینٹین میں بیٹھیں. چلیے, حمید اٹھ گیا. وہ سوچ رہا تھا کینٹین میں پہنچ کر کہیں بیاز نہ نکل آئے. کینٹین زیادہ فاصلے پر نہیں تھی. چھوٹے سے حال میں چند آدمی مختلف میزوں پر نظر آئے. ہلکی آواز سے ریکارڈ بج رہا تھا. گرمی ہے, حسرت ناکام سے جل جاتے ہیں. ہم چراغوں کی طرح شام سے جل جاتے ہیں. دفتن کرنل صاحب نے کہکا لگایا اور حمید حیرت سے انہیں دیکھنے لگا. ذرا ملاحظہ ہو, کرنل صاحب نے کرسی سنبھالتے ہوئے کہا. اگر ہم فوجی اس قسم کی اٹھ پٹانگ باتیں کریں تو کسی حد تک درست ہو سکتا ہے لیکن یہ خالص قسم کے شاعر. ارے میاں, حسرت میں گرمی کہاں ہوتی ہے؟ حسرت تو بیچارگی کی پیداوار ہے اور وہ بھی حضرت ناکام یعنی یخ کا تودا. اور شاعر صاحب ہیں کہ چراغ بن گئے. ہوئی نا میر صاحب سے آگے چھلانگ لگانے کی حسرت ناکام. ہاں لاہولا بھلا,
जी हाँ वाकई, हमीद ने बात टालने के लिए बेदिली से हंसकर कहा। वो डर रहा था कि कहीं अब ये अपना कोई शेर न ठोंक मारे। कर्नल साहब ने इशारे से वेटर को बुलाकर कॉफी का ऑर्डर दिया और हमीद से बोले, शायरी जुजवे अज पैगम्बरी, उसके लिए पैगम्बराना शऊर और अदराक के जरूरत होती है।
यहाँ यार लोग यही नहीं जानते कि हजरत में ठंडक होती है या गर्मी, और मियाँ मैं तो अलामती शायरी का कायल हूँ। ओ अच्छा, हमीद खालीउल ज़हनी कैसे अंदाज में मुस्कुराया। जरा एक शेर सुनो। हमीद ने ठंडी सांस ली, उन्होंने शेर रसीद कर दिया। उनका शेवा नहीं चटाख छनन, छेड़ बैठे थे हम पटाख छनन। हमीद ने सुनी अनसुनी करके सताइशी अंदाज में सर को जुम्बश दी। क्या समझे, बहुत खूब सुभान अल्लाह, मैं पूछ रहा हूँ क्या समझे, कर्नल साहब ने कड़े तेवरों के साथ कहा। दरअसल तुम कतई नहीं समझे, कर्नल साहब का मूड खराब हो गया। समझ ही नहीं सकते, हमारे यहाँ तो बस वही पुरानी लकीरें पीटी जा रही हैं। जी हाँ बिल्कुल, मसलन जी कोई मिसाल पेश करो पुरानी लकीर पीटने की। वो क्या कहते हैं, लकीर का फकीर। जी नहीं, कर्नल साहब खुश्क लहजे में बोले, लकीर का फकीर मुहावरा है। मुहावरा भी तो पुरानी लकीर है, लेकिन वो मजबूरी है। मुहावरे बहरहाल राइज रहेंगे, मैं मजबूरी का कायल नहीं हूँ। हमीद भी बुरा सा मुँह बनाकर बोला, तो तुम मुहावरों के बगैर भी। जी हाँ कतई, मुहावरे भी कोई चीज हुए लाहौला वाला कुवता। तुम पता नहीं कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो तुम्हें खुशजोक आदमी समझ रहा था। मुझे जहन्नम में झोंकिए, मैं आपके शेर का मतलब समझना चाहता हूँ। गालिब का वो शेर सुना है कभी, धूल दुप्पा इस सरापा अनाज का शेवा नहीं। हम ही कर बैठे थे गालिब पेश दस्ती एक दिन। वाहियात शेर है, हमीद बुरा समूह बनाकर बोला। है ना वाहियात, कर्नल साहब चहके, इसके मुकाबले में मेरा शेर, उसका शेवा नहीं चटाख छनन, छेड़ बैठे थे हम पटाख छनन। हमीद ने नाक मुंह पर जोर देकर दोबारा ये शेर सुना और कुछ कहने ही वाला था कि कर्नल साहब बोले, धूल धुप्पे में वो बात कहाँ जो चटाख छनन में है। यह है अलामती शायरी, चटाख थप्पड़ की आवाज और छनन चूड़ियों की छनकार। एहाम मुलसोत कहते हैं इसे। ये अलामती शायरी कहाँ से हुई, हमीद ने जी कड़ा करके कहा। फजूल बातें ना करो, तुम कुछ नहीं जानते। इतने में काफी आ गई और हमीद ने कहा, अलामती शायरी करने वालों में पेश दस्ती की जरूरत ही नहीं होती, इसलिए वो शायरी भी अलामती करते हैं। गालिब का पेशा अब्बास सपागरी था, वो मेरी तरह आनरियरी कैप्टन नहीं थे। तुम मुझ पर चोट कर रहे हो कैप्टन हमीद। जी नहीं, मैं खुद भी अलामती शायरी करता हूँ। अच्छा तो सुनाओ कुछ, मैं भी देखूं, कर्नल साहब गुर्राए। पहले काफी पीऊंगा, उसने दो कप तैयार की और एक कर्नल साहब की तरफ बढ़ाता हुआ बोला, अलामती शायरी क्या मतलब। अभी अर्ज करता हूँ, हमीद ने कहा, काफी का घूंट लेकर पाइप में तंबाकू भरने लगा। फिर वो काफी की चुस्कियाँ लेने लगा था और कर्नल साहब उसे घूरते रहे थे। काफी खत्म हो गई और हमीद पाइप की कश लेता रहा। मैं मंतजर हूँ, बिलाकर कर्नल साहब गुर्राए। सुनिए, हमीद ने खंकार कर शेर पढ़ा, देखो तो अजीब माजरा है, फानूस पे फालसा धरा है। क्या मतलब, मतलब किसी माहिर नफ्सियात से पूछिए। यहाँ अगर सेंसर ने शऊर को इजाजत दी होती तो अलामती शायरी क्यों करते। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जी नहीं, बल्कि आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपकी शायरी अलामती हरगिज नहीं, आप महज इस वहम में मुब्तिला हैं कि आपकी शायरी अलामती है। मैं कर्नल आशिक हुसैन इश्की वहम में मुब्तिला हूँ। कर्नल साहब ने सीना फुलाकर जारहाना अंदाज में सवाल किया, आप अपना नाम भी बदलिए, कर्नल के साथ मैच नहीं करता। इतना ही अजीब लगता है जैसे मजनू खुद को चंगेजी लिखने लगे। तुम गुस्ताख भी हो कैप्टन, हम अदब पर बहस कर रहे हैं जनाब, इसलिए डिसिप्लिन का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, और अगर होता है तो मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि शायरी तर्क कर दीजिए। कर्नल साहब उसे घूरते रहे, उनका चेहरा सुर्ख हो गया था और उनकी आंखें तखल्लुस की हदूद से निकलकर चंगेजियत के दायरे में दाखिल हो गई थीं। दफतन वो उठे और काफी के दाम अदा किए बगैर कैंटीन से बाहर चले गए। हमीद ने तवील सांस ली और तहिया किया कि वो काफी की रकम कर्नल साहब के ही हिसाब में लिखवाएगा, अपनी जेब से अदा नहीं करेगा। उसने उठकर बाथरूम का रास्ता लिया, बाथरूम में कोट उतारा और उलटकर दोबारा पहन लिया, और अब वो सूट की बजाय मैच में था। नाक में रेडीमेड वाले स्प्रिंग रखे और थोड़ी देर बाद बाहर निकल आया, उसकी मेज खाली थी। दफतन कर्नल इश्की दिखाई दिया जो बुखलाए हुए अंदाज में दाखिल हो रहा था। उस मेज के करीब रुककर वो मुड़ा और काउंटर की तरफ हाथ उठाकर चीखा,
और ये आदमी किधर गया? काउंटर क्लर्क बौखलाकर काउंटर से बाहर आ गया। कौन जनाब? उसने बड़े अदब से पूछा। वो आदमी जो मेरे साथ था। कर्नल इश्की ने चारों तरफ नजरें दौड़ाते हुए कहा। उसने हमीद को भी देखा लेकिन यूं ही रवा रवि में और फिर काउंटर क्लर्क की तरफ मतवज्जो हो गया। वो जनाब, पता नहीं, मैं तो समझा था आप दोनों ही तशरीफ ले गए। नहीं, कर्नल इश्की पैर पटक कर बोला, उसे तलाश करो जल्दी, डबल आप मिल जाए तो पकड़कर गार्ड रूम में ले आओ। वो फिर बाहर चला गया। काउंटर क्लर्क इस तरह मुंह बनाए खड़ा था जैसे कर्नल साहब उसे बच्चा जनने का हुक्म देकर चले गए हों। हमीद ने करीब ही की एक मेज संभाल ली थी और काउंटर क्लर्क की तरफ देखे जा रहा था। शायद उसकी जबान से कर्नल इश्की के लिए कोई गंदी सी गाली सुनने का मतमनी था, लेकिन वो तो दूसरे ही लम्हे में मेज साफ करने वाले लड़के पर बरस पड़ा था। ओ हरामी, डबल अप, 10 घंटे में एक मेज साफ करता है। हमीद ने वेटर को इशारे से बुलाकर फिर काफी तलब की और सिगरेट का एक पैकेट मंगवाया। अब वो मेकअप में जेब से पाइप नहीं निकाल सकता था। कॉफी के दूसरे कप के साथ उसने कर्नल इश्की के रवैये पर गौर करना शुरू कर दिया। क्या वो अहमक था? मेज इतनी जरा सी बात पर इस हद तक पहुँच गया। खैर, देखा जाएगा। इतने में दो लेफ्टिनेंट अंदर आए और हमीद के करीब ही बैठ गए। किसी बात पर बुरी तरह हंस रहे थे दोनों, मगर ये हुआ कैसे? वो कौन था? दूसरे ने हंसी पर काबू पाने की कोशिश करते हुए पूछा। कोई पुलिस ऑफिसर था, जनरल कादरी से किसी मसले पर गुफ्तगु करने आया था। बात बढ़ गई होगी, जनरल साहब ने अपने मखसूस अंदाज में दांत निकाले होंगे और उसने जल्लाकर हाथ रसीद कर दिया होगा। लेकिन वो गया कहाँ? पता नहीं, चल्लावा था गोया। सुना है एक आदमी और था उसके साथ, दोनों ही निकल गए। यहाँ से निकलकर कहाँ जाएंगे? गेट पर चेकिंग के दौरान में पकड़े जाएंगे, देखो क्या होता है। उनकी गुफ्तगू सुनकर हमीद का दम निकल गया। यहाँ से निकल भागना वाकई आसान काम नहीं था। उन दफातर की हदूद में उनका दाखिला एक महसूस इजाजतनामे के तहत हुआ था। वापसी के लिए भी वही इजाजतनामा गेट पर दोबारा दिखाना पड़ता और वो इजाजतनामा फरीदी ही के पास था। हमीद ने खत्म होते हुए सिगरेट से दूसरा सिगरेट सुलगाया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो कैंटीन ही में बैठा रहे या बाहर निकलकर फरीदी को तलाश करने की कोशिश करे। उसने कनखियों से उन दोनों ऑफिसरों की तरफ देखा। अब वो खामोशी से काफी पी रहे थे। इतने में मिलिट्री पुलिस के दो जवान कैंटीन में दाखिल हुए और हमीद ने फौरी तौर पर यह फैसला कर लिया कि उसे छुपने की कोशिश न करनी चाहिए। लिहाजा उसके दोनों हाथ चेहरे के करीब आए एक बुलंद आहंग छींक हाल में गूंजी और नथनों के स्प्रिंग हाथों से गुजरते हुए जेब में मुंतकिल हो गए। छींक ऐसी जोरदार थी कि दूसरों को उसकी तरफ मतवज्जो होना पड़ा था। मिलिट्री पुलिस के नौजवान उसकी तरफ बढ़े और ये तो होना ही था क्योंकि वहाँ इसी के जिस्म पर वर्दी नहीं थी। आप कौन हैं जनाब? एक ने उससे पूछा। हमीद ने जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकालकर उसके हवाले कर दिया। ओह, उसने कार्ड पर नजर डालकर अपने साथी से कहा। काम बन गया और हमीद से बोला, उठिए जनाब। क्यों? हमीद ने मुतहीराना लहजे में सवाल किया। गार्ड रूम में आपकी तलबी हुई है, आखिर क्यों? उठिए, दूसरे ने तल्ख लहजे में कहा। वही मालूम हो जाएगा, मुझे काफी का बिल अदा करना है, हमीद उठता हुआ बोला और पुरवकार अंदाज में चलता हुआ काउंटर पर आया। काउंटर क्लर्क उसे हैरत से देखे जा रहा था। हमीद ने पर्स से एक नोट निकालकर काउंटर पर रख दिया। आप जनाब, यानी के वो हकल आया कि दी चेंज, हमीद ने खालिस अमरीकी लहजे में कहा और दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वो उन दोनों के दरमियान चल रहा था। गार्ड रूम में कर्नल इश्की ही का सामना हुआ। ओहो, आप हाथ आ गए जनाब, उसने जहरीले लहजे में कहा। लेकिन मैं इसका मतलब नहीं समझ सका, हमीद का लहजा भी अच्छा नहीं था। कर्नल फरीदी कहाँ है? क्या हमने उन्हें जनरल कादरी के रूम में नहीं छोड़ा था? बहुत पहले की बात है, उसके बाद मैं आपके साथ रहा था। ये कहाँ था? कर्नल इश्की ने उन दोनों से पूछा। कैंटीन में, जनाब, एक ने जवाब दिया। मेरे उठने के बाद तुम कहाँ थे? कर्नल ने हमीद को मुखातिब किया। बाथरूम। ओ, बैठ जाओ, कर्नल इश्की ने सामने वाली कुर्सी की तरफ इशारा किया और हाथी के इशारे से उन दोनों को डिसमिस करके फिर हमीद की तरफ मुतवज्जो हो गया। आप चाहे मुझे गोली मार दें, मैं अपनी बात पर अड़ा रहूंगा, वो अलामती शायरी हरगिज नहीं हो सकती, हमीद ने चिड़चिड़ेपन की एक्टिंग करते हुए कहा। जहन्नम में गई शायरी, तुम हमारी हिरासत में हो, चाहे फांसी हो जाए, लेकिन वो अलामती शायरी हरगिज नहीं थी। मैं कहता हूँ खामोश रहो। बहुत बेहतर, हमीद ने कहा और जेब से पाइप निकाल कर भरना ही चाहता आता था कि कर्नल इश्की ने मेज पर हाथ मारकर कहा, तुम यहाँ तंबाकू नोशी नहीं कर सकते, आखिर मेरी खता भी तो मालूम हो जनाब। तुम्हारा चीफ क्या हुआ मेरे चीफ को? वो जनरल कादरी को जख्मी करके गायब हो गया। नहीं, हमीद बौखलाकर खड़ा हो गया। वैसे उसकी ये हरकत कतई तौर पर अदाकारी ही थी, क्योंकि उसे तो कैंटीन ही में इस वाक्य का इलम हो चुका था। बैठ जाओ हरचंद के, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं, लेकिन जब तक कर्नल फरीदी हाथ ना आ जाए तुम्हारी गुलखलासी नहीं हो सकती। और इस अरसे में मुझे क्या करना होगा? हाँ हाँ, अच्छा सवाल है, कर्नल इश्की ने कुछ सोचते हुए कहा और फिर चौंककर बोला, क्यों, क्या तुम मेरी गजलें नहीं सुनोगे? जहाँ तंबाकू नोशी ममनू है वहाँ गजलों का क्या काम? बस सीधा साधा कलमा पढ़वा दीजिए मुझे और फिर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बुजदिलों किसी बातें ना करो जवान, चलो सुनो। सौदा के रंग में कही थी, आप बराए करम पहले ये बताइए कि जनरल साहब कैसे जख्मी हुए? जनरल कादरी कभी तफसील से गुफ्तगू नहीं करते, उन्होंने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है और किसी जख्मी शेर की तरह दाड़ रहे हैं। जब तक कर्नल फरीदी हाथ नहीं आता वो कमरे का दरवाजा नहीं खोलेंगे, उन्होंने धमकी दी है। यहाँ से निकल जाना आसान तो नहीं, यही वजह है कि मैं तुम्हें इस अरसे में अपनी चंद ताज़ा गजलें सुना देना चाहता हूँ। सुनाइए साहिब, हमीद मुद्दसी आवाज में बोला, लेकिन ये जुल्म है कि गजलें तो हो जाएंगी और मैं तंबाकू नोशी नहीं कर सकूंगा। उठो दफतन, कर्नल इश्की उठता हुआ बोला, मैं कहीं और चलकर तुम्हें गजलें सुनाऊंगा। हमीद की समझ में नहीं आ रहा था कि चक्कर क्या है, कर्नल इश्की इतना अहमक तो नहीं हो सकता। वो भी उठ गया और दोनों बाहर आए। इस बार फिर उनका रुख कैंटीन ही की तरफ था। कैंटीन पहुंचकर हमीद ने बेबसी से कहा, आखिर आप चाहते क्या हैं? मियां होश में आओ, कितनी बार कहूं कि तुम्हें मेरी ताज़ा गजलें सुननी पड़ेंगी। अरसा दराज के बाद एक ऐसा आदमी मिला है जो मेरी गजलों को सुनकर समझ भी सकेगा। अलामती शायरों वाली बात तो महज इम्तिहान था और तुम इस इम्तिहान में पास हो गए। कितने नंबर दिए? हमीद ने खुश होकर पूछा। संट पर संट, चलो बैठ जाओ, मतलब अर्ज है। इसके बाद गजल चल पड़ी। पढ़ने का अंदाज ऐसा ही था जैसे कोई कमजर्फ आदमी अपनी खाल से बाहर होकर अपने किसी कारनामे का जिक्र कर रहा हो। हमीद जिंदगी से बेजार हो जाने की हद तक बोर होता और सुनता रहा। पहली गजल, दूसरी गजल, तीसरी गजल और चौथी गजल शुरू होने से पहले ही वो हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अब गोली मार देने का हुक्म दे दीजिए ना, सिसका क्यों रहे हैं? उसने गड़गड़ाकर कहा, क्या मतलब ये क्या? बैठ जाओ, मैं ऐड करता हूँ कि आइंदा कभी किसी अदबी बहस में ना पड़ूंगा। कैप्टन हमीद बैठ जाओ, ये मेरा हुक्म है। इतने में एक लेफ्टिनेंट ने मेज के करीब आकर कर्नल को सैल्यूट किया। क्या बात है? कर्नल ने नाखुशगवार लहजे में पूछा। जनाब, वो एक लोडिंग ट्रक में बैठकर फरार हो गया। क्या मतलब, क्या सबूत है? कर्नल इश्की कुर्सी से उठता हुआ बोला, जनाब ट्रक ड्राइवर लेटरिन में बेहोश पाया गया है, बिल्कुल बरहना। किसी ने उसके जिस्म पर एक तार भी नहीं छोड़ा और जनाब उसका ट्रक भी गायब है। कर्नल इश्की हमीद को इसी लेफ्टिनेंट की निगरानी में देकर बौखलाए हुए अंदाज में कैंटीन से बाहर चला गया। इस तरह बरहमत परवरदिगार चौथी गजल का खतरा टल गया था। फिर तकरीबन आधे घंटे तक वो इसी जगह खड़ा रहा था और हमीद खुद को कैदी महसूस करता रहा था। खुदा खुदा करके कर्नल इश्की की वापसी हुई और उसने लेफ्टिनेंट को छुट्टी दी। उसके चले जाने के बाद हमीद से बोला, अब तुम लोग हमसे किसी किस्म की नरमी की तवक्को ना रखो। क्या मेरा चीफ सचमुच निकल गया? हमीद ने पुरतफक्कर लहजे में पूछा। हाँ निकल गया, और यकीन करो कि उसकी जिंदगी खतरे में पड़ गई है। मिलिट्री इंटेलिजेंस के जिस आदमी के भी हत्थे चढ़ गया वो उसे गोली मार देगा। जनरल का ऑर्डर कुछ इसी किस्म का है। ये तो बहुत बुरा हुआ, बुरे से भी बुरा कैप्टन हमीद। अच्छा, अगर वो आसानी से हाथ आ जाएं तो? मेरा मतलब ये है कि फिर तो उनकी जिंदगी खतरे में नहीं होगी। मेरा ख्याल है कि इस सूरत में नरमी बरती जाएगी। अच्छी बात है, मैं कोशिश करूंगा। किस बात की कोशिश? यही कि वो आसानी से हाथ आ जाएं। हूँ, कर्नल इश्की कुछ सोचने लगा, लेकिन शर्त यह है कि मुझे यहाँ से तन्हा जाने दीजिए। मैं रात के अंधेरे में आपको वहाँ ले चलूँगा जहाँ उन्होंने पनाह ली होगी। मुझे बताओ कहाँ पनाह ली होगी? अब इस बहस में ना पड़िए, मेरे बगैर आप उन पर हाथ ना डाल सकेंगे तो तुम भी साथ चलो, हम रात का इंतजार नहीं कर सकते। आप और आपके साथी सादा लिबास में होंगे, ये मुमकिन है, तो फिर देर न कीजिए। बड़ी फुर्ती से रवानगी की तैयारी हुई थी। हमीद ही की तजवीज के मुताबिक मुताबिक मिलिट्री की जीपों के इस्तेमाल से इज्तनाब किया गया था। उनकी बजाय तीन कारें मुहैया की गई थीं और हमीद ही इस काफिले को अपनी सरकर्दगी में ले निकला था। वो कर्नल इश्की की कार में उसके बराबर बैठा था और ये कार कर्नल इश्की खुद ड्राइव कर रहा था। उस कार में सिर्फ वही दोनों थे। कर्नल फरीदी को इस किस्म की कोई हरकत ना करनी चाहिए थी, इश्की बोला। अनरियली, कर्नलों से तो शायरी भी नहीं हो सकती, हमेशा गैर कर्नलाना हरकतें करते रहते हैं। शेर सुनो, इश्की ने हाँक लगाई। इससे ज्यादा मुनासिब यह होगा कि मैं जहाँ कहूँ वहाँ आप गाड़ी रोक दें। क्यों? दो तीन जगह फोन करके मालूम करने की कोशिश करूँगा कि वो हजरत कहाँ हैं। हमीद उसी सड़क के एक ऐसे ड्रग स्टोर से वाकिफ था जहाँ एक तरफ से दाखिल होकर दूसरी तरफ की सड़क पर निकल जाने के इम्कान हो सकते थे, लेकिन ये जरूरी नहीं था कि कर्नल इश्की उसे ड्रग स्टोर में तनहा जाने देता। क्या आप मुझे इसकी इजाज़त देंगे, हमीद ने कुछ देर बाद पूछा। यकीनन यकीनन। अच्छा तो फिर अगले चौराहे से गुजरकर गाड़ी रोक दीजिएगा, हमीद ने कहा। वो सोच रहा था कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है, अगर कर्नल इश्की खुद भी साथ ही उतरा तो फिर कहीं और डांट देने की कोशिश की जाएगी। वो बहरहाल उनके चक्कर से निकल जाना चाहता था। अगले चौराहे पर कर्नल इश्की ने गाड़ी रोक दी और हमीद के साथ खुद उतरा, लेकिन वो दाहिनी जाने वाला दरवाजा खोलकर उतरा था और हमीद बाईं जाने वाले दरवाजे से उतरकर ड्रग स्टोर की तरफ बढ़ गया था। उसने मुड़कर देखा ही नहीं कि कर्नल इश्की भी आ रहा है या नहीं, बस वो स्टोर में घुसता चला गया। काउंटर पर पहुंचकर उसने मुड़कर देखा, इश्की अभी तक स्टोर के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच सका था। उसकी पुश्त स्टोर की तरफ थी और दो फकीर उससे शायद ज्यादा से ज्यादा खैरात वसूल कर लेने पर अड़ गए थे। हमीद ने सेल्समैन से एक ऐसी दवा तलब की जो इन दिनों का हो रही थी। उसने नफी में जवाब दिया और हमीद ने बड़ी तेजी से दूसरी तरफ के दरवाजे से निकल जाना चाहा। ठहरो, पुछ से किसी ने ललकारा। ये नामुमकिन था कि इश्की इतनी जल्दी वहाँ पहुँचा हो। फिर भी हमीद ने मुड़कर देखा नहीं, एक ही जस्ट में वो फुटपाथ पर था। उस लाइन में दाएं जानिब एक हेयर कटिंग सैलून था। वो उसमें दाखिल हुआ और बार्बर से हिमाम के लिए कहता हुआ आगे बढ़ गया। हिमाम इत्तेफाक से खाली ही था। उसने हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। इतना अंदाजा तो था ही कि ललकारने वाला उसे सैलून में दाखिल होते ना देख सका होगा, क्योंकि वो ललकार करीब की नहीं थी। गालिबन इश्की का कोई आदमी भी पिछली गाड़ियों में से किसी से उतरा था और दूसरी तरफ के फुटपाथ ही पर रुककर उसकी निगरानी करता रहा था। यहाँ हिमाम में वो बड़े सुकून के साथ नहाता रहा और उसके बाद उसे पतलून उलटने का मौका भी मिल गया। अब वो बिल्कुल ही दूसरे रंग के सूट में था। नाक के नथनों में फिर स्प्रिंग फिट किए गए थे। इस तरह उसने हिमाम में तकरीबन 20 मिनट गुजारे थे और किसी किस्म की दखल अंदाजी नहीं हुई थी। वो निहायत इत्मीनान से बाहर निकला और बार्बर को पैसे देने के बाद फुटपाथ पर भी उतर आया। लाश की हरकत। फर्नीला बिल्डिंग के एक बड़े कमरे में एक लाश पड़ी हुई थी और एक सफेद फॉर्म आदमी उसके करीब खड़ा बार बार कलाई की घड़ी देखे जा रहा था। कुछ देर बाद वो उसके करीब दो जानों बैठकर उसकी नब्ज देखने लगा, फिर सीने से कान लगाकर थोड़ी देर ऐसी पोजीशन में रहा जैसे किसी भूली भटकी धड़कन का इंतजार हो। इस दौरान में रिस्ट वॉच पर भी नजर रही थी। कुछ लम्हे सीने से कान लगाए रखने के बाद वो लाश के पास से हटकर करीबी कुर्सी पर जा बैठा। नजर अब भी लाश की तरफ थी। अचानक लाश में जुम्बश हुई और वो कुर्सी से उठ गया, लेकिन जहाँ था वहीं खड़ा रहा, आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की। लाश की हरकत बदस्तूर जारी रही। ऐसा मालूम होता था जैसे उसमें एक ना रुकने वाली थरथरी पड़ गई हो। ये कैफियत 3 मिनट तक रही। वो घड़ी ही पर नजर जमाए रहा था। लाश फिर पहले ही की तरह साकत हो गई। फिर उसने उसे उठते देखा। सुबह पहर कहूँ या शाम बखेर, लाश ने उससे पूछा। रात के 8 बजे हैं, सफेद फॉर्म आदमी ने कहा। दूसरा आदमी जो जरा देर पहले लाश की तरह फर्श पर पड़ा हुआ था, नस्लन निंगरू मालूम होता था, एक कवियुल हफ्सा और कदावर निंगरू। ओहो, तो ये खाने का वक्त है यकीनन, और तुम इस वक्त पसंदीदा डिश मेज पर पाओगे। 4000 साल से भूखा हूँ, तुम मुतमैन रहो, सैर होकर खा सकोगे। तो फिर अच्छे आदमी, मुझे जल्द से जल्द मेज तक ले चलो, नेंगरू ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। सफेद फॉर्म बाईं जानिब वाले दरवाजे की तरफ मुड़ा था और उसके करीब पहुंचकर रुक गया था। चलो, उसने दरवाजे की तरफ हाथ उठाए। नेंगरू पहले उस दरवाजे में दाखिल हुआ, सफेद फॉर्म उसके पीछे चल रहा था। वो दूसरे कमरे में आए। यहाँ एक बड़ी सी मेज पर खाना चुना हुआ था। नेंगरू किसी बहुत ज्यादा भूखे आदमी की तरह मेज की तरफ लपका था। सफेद फॉर्म आदमी ने भी एक कुर्सी संभालनी चाही, लेकिन नेंगरू हाथ उठाकर बोला, तुम नहीं पहले मैं खा लूं। क्या फर्क पड़ता है, सफेद फॉर्म ने कहा, बहुत थोड़ा सा खाता हूं। नहीं कतई नहीं, चले जाओ, हट जाओ, मुझे ऐसा लगता है जैसे 4000 साल से भूखा हूँ। सफेद फार्म आदमी वो कुर्सी में से बहुत दूर हटा ले गया और उस पर बैठता हुआ बोला, अच्छी बात है, जैसी तुम्हारी मर्जी। नेग्रू ने बड़ी तेजी से खाना शुरू किया और 3-4 मिनट के अंदर ही अंदर पूरी मेज का सफाया कर दिया। सारी ही प्लेटें खाली हो चुकी थी। सफेद फार्म आदमी उसे ऐसी नजरों से देख रहा था जैसे अब खाने के बाद शायद उसी की बारी आ जाए। और क्या है, नेग्रू ने भारी भरकम आवाज में पूछा। और काफी, जो कुछ देर बाद पेश की जाएगी। सफेद फार्म आदमी आहिस्ता से बोला, लेकिन यहाँ नहीं तो फिर अब कहाँ चलना पड़ेगा? तंबाकू नोशी के कमरे में। चलो, वो उठता हुआ दाड़ा, लेकिन ए मेरे हमदर्द, मैं तुम्हें नहीं पहचान सका। हमदर्दी के लिए जान पहचान जरूरी नहीं। सफेद फार्म आदमी मुस्कुराया। तुम्हारा नाम क्या है, नेग्रू ने पूछा। पीटर मिचकोव, मैं माइकल हूँ, नेग्रू ने अपना भारी भरकम हाथ मुसाफिर के लिए आगे बढ़ाया। सफेद फार्म पीटर मिचकोव का हाथ उसके हाथ में किसी नन्हे से बच्चे का हाथ लग रहा था। फिर वो दोनों उस कमरे से तीसरे कमरे में पहुंचे। यहाँ कई आदमी एक बड़ी मेज के गिर्द बैठे काफी पी रहे थे। ये सब भी सफेद फार्म ही थे। मेज के करीब कोई कुर्सी खाली नहीं थी। नेग्रू ने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन यहाँ उन कुर्सियों के अलावा और कोई थी ही नहीं। पीटर मिचकोव आहिस्ता से बोला, मोसियो माइकल, यहाँ तुम्हें जबरदस्ती कुर्सी हासिल करनी होगी। ये लोग बदतमीज मालूम होते हैं, खुद से कुर्सी पेश नहीं करेंगे। क्या मैं इन सबों को उठा उठा कर बाहर फेंक आऊँ? नहीं, इसकी जरूरत नहीं, सिर्फ अपने लिए एक कुर्सी हासिल करो। अच्छी बात है, माइकल के होंठों पर अजीब सी मुस्कुराहट नमूदार हुई और उसने ऊंची आवाज में कहा, शरीफ आदमियों, बेहतर ये है कि एक कुर्सी मेरे लिए खाली कर दी जाए। उन्होंने चौंककर उसकी तरफ देखा था। कमरे की फिजा पर अजीब सी खामोशी मुसल्लत हो गई। वो उसे देखे जा रहे थे, लेकिन किसी ने भी उसके लिए कुर्सी खाली नहीं की। दूसरी बार कुछ कहने का आदी नहीं हूँ, माइकल ने कहा और झूमता हुआ उनकी तरफ बढ़ने लगा। वो सब अपनी जगहों पर जमे रहे। ऐसा मालूम होता था जैसे उन्होंने उसकी बात सुनी ही ना हो। दफतन माइकल झुका और एक आदमी की कमर थाम कर उसे अपने सर से ऊंचा उठाए हुए फिर उसी जगह पलट आया जहाँ पहले खड़ा था। उसे बाहिस्तगी एक तरफ खड़ा करके फिर मेज की तरफ पलट आया, लेकिन इस बार उन सबों ने बैक वक्त उस पर छलांग लगाई। फिर तो ऐसा मालूम होने लगा जैसे भूचाल आ गया हो। पीटर मिचकोव पहले ही कमरे से निकल भागा था। माइकल किसी भपरे हुए शेर की तरह दाड़ता हुआ उन लोगों को उठा उठाकर पटक रहा था। फिर उनमें से एक ने उस पर चाकू से वार किया। खून का फवारा उसके बाजू से फूट निकला, लेकिन जिसने चाकू से वार किया था उसकी गर्दन भी दूसरे ही लम्हे में टूट गई। ऐसा गिरा के फिर ना उठ सका। वो फिर उससे लिपट पड़े। उसके खून की छींटे उनके चेहरों पर पड़ रही थीं और वो चीख रहे थे। फिर जरा ही सी देर में तनहा माइकल खड़ा रह गया। वो सब ढेर हो गए थे, बेहिसो हरकत। दफतन माइकल जोर से दहाड़ा, तुम कहाँ चले गए पीटर मिचकोव? और वो भी उसी तरह आवाजें देता हुआ उस कमरे से चला गया। दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया था। कुछ देर बाद बैंक जाने वाला दरवाजा खुला और पीटर मिचकोव एक औरत के साथ अंदर दाखिल हुआ। ये देखिए मादाम, उसने बड़े मुअद्दबाना अंदाज में औरत से कहा, क्या सबूत है कि ये सब उसी की वजह से मरे होंगे? ओह, वो देखो, शायद उसकी गर्दन टूटी है। सिर्फ एक मादाम, वो जिसने चाकू से इस पर हमला किया था, सिर्फ वही आदमी इसकी कुव्वत का शिकार हुआ था। बकिया लोग इसी तरह मरे हैं। औरत झुककर उन लाशों को देखने लगी, उनके जिस्मों को टटोलती भी जा रही थी। कुछ देर बाद सीधी होकर बोली, तो तुम्हारा तजुर्बा कामयाब रहा? हाँ मादाम, मैं तो यही समझता हूँ। वो कहाँ गया? उसके जख्म की मरहम पट्टी की जा रही होगी, क्या खुद उसे इससे कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता? नहीं मादाम, आप देख ही लेंगी और सुबह तक उसका वो जख्म भी हैरत अंगेज जोर पर भर जाएगा। वो दोनों 6 लाशें उस कमरे में छोड़कर राहदारी में निकल आए। औरत पुरवकार अंदाज में चल रही थी और पीटर मिचकोव उसका एक अदना गुलाम मालूम होता था। वो फिर उसी कमरे में आए जहां नेग्रू माइकल कुछ देर पहले एक बेजान लाश की हैसियत से पड़ा रहा था। यहां इस कमरे में सिर्फ एक ही कुर्सी थी। औरत उस पर बैठती हुई बोली, आज की रिपोर्ट, आज एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया मादाम, बयान करो। वो खुश्क लहजे में बोली, कहानियों का सा अंदाज ना अख्तियार किया करो। बहुत बेहतर मादाम, आज कर्नल फरीदी और उसके असिस्टेंट को मिलिट्री हेडक्वार्टर में तलब किया गया था। फिर तुम रुके जल्द कहो, औरत तेज लहजे में बोली। जनरल कादरी के रूम में किसी किस्म का हंगामा हुआ और थोड़ी देर बाद कर्नल फरीदी की तलाश शुरू हो गई। इत्तला मिली है कि वो किसी लोडिंग ट्रक के ड्राइवर को बेहोश करके उसके बेस में साफ निकल गया। हूँ, औरत की पेशानी पर शिकने पड़ गईं। वो तवील सांस लेकर कहता रहा। इसके बाद कुछ ऑफिसर उसके असिस्टेंट को साथ लेकर उसकी तलाश में निकले। एक जगह वो भी उन्हें डांट देकर निकल गया। फिर एक घंटे के अंदर अंदर मिलिट्री वालों ने वो सारा इलाका उलट पुलट कर रख दिया जहां उसका असिस्टेंट गायब हुआ था। जनरल कादरी के रूम में क्या हुआ था, औरत ने पूछा। ये तो अभी नहीं मालूम हो सका, रिपोर्ट नामुकम्मल है पीटर, वो तेज लहजे में बोली। बहुत जल्द मालूम हो जाएगा मादाम, हमारे एजेंट की रसाई जनरल कादरी के रूम तक नहीं हो सकी। खुद जनरल कादरी को हमारा एजेंट होना चाहिए था। तुम लोग काम नहीं कर रहे हो पीटर। मादाम, ये मुल्क मेरी समझ से बाहर है। लोगों की इक्तेसादी हालत अच्छी नहीं, वो आपस में एक दूसरे को काटते बोड़ते रहते हैं, लेकिन किसी दूसरे मुल्क का आलाकार बनने पर तैयार नहीं। बकवास है, तुमने कोशिश ही नहीं की। इसके अलावा फिलहाल हमारा और काम ही क्या है, दिन रात इसी तगोदो में रहते हैं कि किसी तरह कुछ मकामी आदमियों का तावन भी हासिल करें, लेकिन बस वो सिर्फ मामूली किस्म के गैर कानूनी कामों की हद तक होता है। मादाम, मैं एक बार फिर अर्ज करूंगा कि आपके गुलामों में वली जाह बहुत काम का आदमी था, उसे भूल जाओ, वो अपनी अफादियत खो चुका है। अब वो यहाँ के सरकारी हलकों पर असरअंदाज नहीं हो सकता। फिर भी मादाम, नहीं बस, वो हाथ उठाकर बोली, मैं उसके बारे में कुछ नहीं सुनना चाहती। अब न मुझे उसकी जिंदगी से दिलचस्पी है और न मौत से। मादाम, मालिक हैं। पीटर मिचकोफ ने ठंडी सांस ली। तुम अब सिर्फ ये मालूम करने की कोशिश करोगे कि जनरल कादरी के रूम में क्या हुआ था। बहुत बेहतर मादाम, बस जाओ। लेकिन खैरों मोटे आदमी के बारे में क्या रिपोर्ट है, पीटर मिचकोफ ने घड़ी पर नजर डालते हुए कहा। दिन भर आवारागर्दी करता है और शाम को आर्लेक्चनू में जा बैठता है। वो इस वक्त वहीं होगा, कई दिनों से मामूल में फर्क नहीं आया। औरत ने सर की जुम्बश से उसे चले जाने को कहा। इसके बाद भी वो वहीं बैठी रही, किसी गहरी सोच में थी। कुछ देर बाद उठी और कमरे से निकलकर तवील राहदारी से गुजरती हुई इमारत से बाहर आ गई। कंपाउंड में एक छोटी सी कार खड़ी थी। फिर उस कार में बैठकर वो करीब ही की एक दूसरी इमारत में पहुंची। यहां उसने अपना लिबास तब्दील किया, स्कर्ट और ब्लाउजर की बजाय साड़ी में नजर आई। साड़ी में उसकी दिलकशी में मजीद इजाफा हो गया था। फिर कद आदम आईने के सामने खड़े होकर उसने अपनी आंखों पर किसी किस्म का लोशन लगा लिया था और छोटे से मेकअप टेबल फैन की हवा अपने चेहरे पर लेती रही थी। देखते ही देखते उसकी पलकें किसी कदर मतवरम हो गईं। इस तरह उसकी आंखों की बनावट में नुमाया तब्दीली हुई थी और ये तब्दीली बड़ी दिलकश थी। चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया था और आंखों में एक वजनी से नशीलेपन की झलकियां पाई जाने लगी थी। उसके बाद वो फिर बाहर निकली थी और उसकी छोटी सी कार शहर के सबसे बारौनक इलाके की तरफ रवाना हो गई थी। आर्लेक्चनो पहुंचने तक उसने तेज रफ्तारी के कमालात दिखाए थे। ड्राइविंग में उसकी मशाकी यकीनन काबिल-ए-दाद थी। गाड़ी आर्लेक्चनो की कंपाउंड में छोड़कर वो डाइनिंग हॉल में आई। ज्यादातर मेजें घिरी हुई थीं। वो काउंटर के करीब रुककर चारों तरफ नजरें दौड़ाने लगी और बिलाखिर वो दिखाई दे गया जिसके लिए यहाँ आई थी। लेकिन उसके करीब कोई मेज खाली नहीं थी। वो बड़े इनहमाक से गोश्त का एक बहुत बड़ा टुकड़ा दोनों हाथों से थामे दांतों में नोच नोच कर खाई जा रहा था। वो द्योकामत आदमी इस अंदाज से खाता हुआ सचमुच द्यो ही लग रहा था। उसने चंद लम्हे उसी जगह खड़े गुजारे और फिर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई उसकी मेज के करीब आई। जो कामत उस वक्त गोश्त नोच रहा था उस पर नजर पड़ते ही उसी हालत में बेहिसो हरकत हो गया, यानी हाथ बदस्तूर उठे रहे और दांतों के नीचे गोश्त दबा रह गया। सिर्फ पलकें झपक रही थीं। काश उस वक्त मेरे पास कैमरा होता, औरत ने बड़ी मुतरनम आवाज में आहिस्ता से कहा और द्योकामत आदमी के हाथ से गोश्त का टुकड़ा छूट पड़ा। अरे बाप, बेख्तियार उसकी जबान से निकला था और वो बौखलाए हुए अंदाज में खड़ा हो गया था। उसके दोनों हाथ मसाले से सुने हुए थे। ओ हो बेटिए, आपके कपड़े खराब हो गए। अरे अरे, ये क्या, अब क्या, आप ये दोनों सुने हुए हाथ अपने मुंह पर फेर लेंगे। खैर, ये नेपकन लीजिए, हाथ साफ कर लीजिए। जी गां वो बौखलाए हुए अंदाज में बोला और उसके हाथ से पेपर नेपकन लेकर अपने हाथ साफ करने लगा। औरत ने इतनी देर में अपने वेंटी बैग से रुमाल निकाल लिया था, उसे उसकी तरफ बढ़ाती हुई बोली, अब इससे अपने कपड़े साफ कीजिए। जी नहीं, ये खराब हो जाएगा, कितना अच्छा है, वो हकलाया। आप इसकी परवाह ना कीजिए, औरत ने कहते हुए जबरदस्ती रुमाल उसे थमा दिया। उस पर तो ग्रांडील पर गोया बधवासी का दौरा पड़ गया था। बड़ी मुश्किल से वो अपने सूट पर लगे हुए धब्बों को खुश्क कर सका। अब क्या मुझसे बैठने को भी ना कहोगे, वो अठलाई। जरूर जरूर सर, आँखों पर वो खनकती हुई सी हंसी के साथ बैठ गई और वो भी बैठ ही गया था, लेकिन इत्मीनान से बैठा हुआ नहीं लगता था। बस मालूम होता था जैसे मुकाबल की जुबान से कुछ निकलते ही उठकर भाग निकलेगा। तुम सोच रहे होगे कि शायद ये कोई फ्लर्ट है, औरत ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। अरे नहीं, लाहौल बिला कुवत, तोबा तोबा, वो अपना मुँह पीटने लगा। मैं कमी हूँ कमर सुल्ताना, बेतकल्लुफ अहबाब कमी कहती हैं, और तुम ही, ये तो बड़ी अच्छी बात है, काफ से कमी और काफ से कासिम। वाह, तो तुम्हारा नाम कासिम है। बिल्कुल बिल्कुल, तुम सोच रहे होगे कि मैंने खामखा छेड़कर जान पहचान क्यों पैदा करनी चाहिए। नहीं तो बिल्कुल नहीं, अल्लाह कसम, तब तो तुम बड़े अजीब आदमी हो। बस मैं ऐसा ही हूँ, कासिम ने लापरवाही जाहिर करने की कोशिश की। मैं आर्टिस्ट हूँ, तस्वीरें बनाती हूँ। तुम्हें देखकर एक बड़ा खूबसूरत आइडिया जहन में उभरा है, मुझे देखकर, कासिम ने हैरत से पूछा। हाँ, तुम्हें देखकर, तुम बड़े मासूम हो। और कासिम मासूमियत जाहिर करने की कोशिश में और ज्यादा चगद नजर आने लगा। मैं बचपन ही से तुम ही जैसे एक मर्द के ख्वाब देखती आ रही हूँ। क्या देखा ख्वाब में? कासिम की बांछें खुल गईं। बस एक आम सा ख्वाब कि मैं एक ऐसे ही आदमी को कभी न कभी जरूर चाहूंगी जैसे तुम हो। मगर कासिम ठंडी सांस लेकर बोला। क्या बात है? कुछ नहीं, कासिम ठंडी सांस लेकर बोला। नहीं, मुझे बताओ, तुम्हारे चेहरे पर अंदरूनी कर्ब के आसार हैं और तुम पहले से कुछ ज्यादा ही दिलकश नजर आने लगे हो। आप तो मजाक करती हैं, कासिम सर झुकाकर अपनी उंगलियां मरोड़ता हुआ बोला। यकीन करो, ये मेरे दिल की आवाज थी। खुदारा मुझे बताओ कि तुम यक बयक उदास क्यों हो गए? मैं अभी कुछ और खाना चाहता हूँ, तो खाओ ना। मैंने भी अभी तक रात का खाना नहीं खाया, लेकिन अब तुम जो कुछ खाओगे वो मेरे जिम्मे होगा। अरे वाह, आप खुद मेरे मेहमान हैं। नहीं, मेरा दिल ना तोड़ो, आज मेरा ख्वाब पूरा हुआ है। मेरे ख्वाबों में उस आदमी की देखभाल भी शामिल रही है। मैं तुम्हें निखारूंगी, तुम्हें संवारूंगी, मैं तुम्हें। वो खामोश हो गई। बिल्कुल ऐसा ही मालूम हुआ जैसे शिद्दत जज्बात से उसका गला रुंध गया हो। अच्छा अच्छा, जो आप कहें, मैं भी जिंदगी भर आपका कहना नहीं टालूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया, वो ठंडी सांस लेकर पुरदर्द लहजे में बोली। गालिबन गोश्त का वो टुकड़ा कासिम के खाने की इब्तिदा ही थी क्योंकि एक वेटर ने करीब आकर कहा, दूसरा आइटम तैयार है जनाब, लाओ लाओ, और जो कुछ बेगम साहब फरमाए वो भी लाओ। कासिम जल्दी से बोल पड़ा। कमी ने वेटर से मेन्यू तलब किया और अपने लिए भी कुछ चीजें मुंतखब करके आर्डर देते हुए कासिम से बोली, मैं मालूम करना चाहूंगी कि तुम्हें खाने में क्या मरगूब है। ले आएगा, मैं पहले ही आर्डर दे चुका हूँ। वेटर चला गया। थोड़ी देर तक वो खामोश रहे, फिर कमी बोली, तुम आखिर इस वक्त उदास क्यों हो गए थे? मैं क्या बताऊँ, आप इतनी अच्छी हैं कि मैं आपको धोखा नहीं दे सकता। धोखा? भला धोखा क्यों? मेरी शादी हो चुकी है, उसने रो देने वाले लहजे में कहा और दोनों हाथों से अपना मुंह छुपाने की कोशिश करने लगा। हाय, तो इसमें रोने की क्या बात है? कमी ने हैरत जाहिर की। यानी कि अब आप मिली हैं तो मैं क्या करूं? ओहो, तो तुम पुराने ख्यालात के आदमी मालूम होते हो। खैर, मैं ठीक कर लूंगी तुम्हें। जी मैं नहीं समझा, तुम्हारी 10 बीवियां हों फिर भी तुम्हें 11वीं औरत से मोहब्बत करने का हक हासिल है। यही चीज तो है जो आदमी को आम जानवरों से बुलंद करती है। जानवरों में सिर्फ एक मादा रखने का रुझान कुदरत की तरफ से वदियत हुआ है। अच्छा, तो आदमी को इसीलिए वो कहते हैं अफसरुल मखलूकात। اشرف المخلوقات کمی نے تصحیح کی. وہی وہی تو مطلب یہ کہ بیوی بھی اور آپ بھی. ہاں میں تمہیں یہی سمجھانا چاہتی ہوں کہ محبت ان رشتوں سے بالاتر ہے. تمہیں کون روک سکتا ہے مجھ سے محبت کرنے سے؟ کوئی بھی نہیں. روک کر تو دیکھے, قاسم چھاتی ٹھونک کر بولا. بس ٹھیک ہے, اب کھانا کھاؤ. ویٹر ان کی طلب کی ہوئی چیزیں لا کر میز پر لگانے لگا تھا. اس میں بکرے کی ایک مسلم ران بھی تھی. انہوں نے کھانا شروع کیا. عورت بار بار قاسم کے انہماق کو عجیب انداز میں دیکھنے لگتی تھی. بکرے کی ران ادھیڑتے وقت شاید وہ اس کے وجود کو بھی فراموش کر بیٹھا تھا. اور کچھ دیر بعد جب صرف ہڈی اس کے ہاتھ میں رہ گئی تو وہ کمی کی طرف متوجہ ہوا. تمہارا ہر انداز خوبصورت ہے, وہ مسکرا کر بولی. قاسم نے یوں ہی روا روی میں دانت نکال دیے. شاید اس نے سنا ہی نہیں تھا کہ اس نے کیا کہا ہے, کیونکہ وہ تو ران کے ختم ہوتے ہی ویٹر کی طرف متوجہ ہو گیا تھا. اب دونوں مرغ لاؤ, اس نے ویٹر سے کہا. بہرحال وہ ایک گھنٹے سے پہلے اپنا کھانا ختم نہیں کر سکا تھا. اس کے بعد کافی طلب کی گئی اور وہ پھر باتوں میں لگ گئے. تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کمی نے پوچھا. بچے ہی ایک بھی نہیں. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. میں نہیں سمجھی. کوئی اور بات کیجیے, قاسم نے گلوگیر آواز میں کہا. اچھا, تمہیں آج تک کسی سے محبت بھی ہوئی؟ محبت؟ قاسم نے ٹھنڈی سانس لی. چند لمحے منہ چلاتا رہا, پھر بولا, محبت تو کسی سے نہیں ہوئی, لیکن. لیکن کیا؟ کچھ نہیں, جانے دیجئے. خیر نہیں بتانا چاہتے تو میں مجبور نہیں کروں گی. میں تو دراصل اپنا شاہکار تخلیق کرنا چاہتی ہوں. وہ کیا چیز ہے؟ تمہاری تصویر کھانا کھاتے ہوئے. آپ مزاق کر رہی ہیں, قاسم نے جھیپے ہوئے انداز میں کہا. او یقین کرو میں تصویریں بناتی ہوں. اچھا اگر تمہیں فرصت ہو تو چلو میرے ساتھ, میں اسی وقت تمہیں اپنا اسٹوڈیو دکھاؤں گی. ضرور میں ضرور چلوں گا. اٹھیے, قاسم مضطربانہ انداز میں بولا. کافی تو پیو, اطمینان سے چلیں گے. میں اپنے گھر میں تنہا رہتی ہوں. ہاں تنہا رہتی ہیں؟ کیوں, میرا اس دنیا میں کوئی نہیں, وہ پردرد آواز میں بولی. اوہ میں آپ کے لیے کیا کروں؟ قاسم نے متاسفانہ انداز میں ہاتھ ملتے ہوئے کہا. کچھ نہیں, میرے لیے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. میرے والدین ہی کچھ نہ کر سکے. آپ کے والدین کہاں ہیں؟ دوسری دنیا میں. آپ کی شادی؟ مجھے آج تک کوئی اس قدر پسند ہی نہیں آیا کہ اس سے شادی کر لیتی. مجھے افسوس ہے, قاسم نے ٹھنڈی سانس لی. وہ خاموش ہو کر کافی کے چھوٹے چھوٹے گھونٹ لینے لگی تھی. دفتن قاسم کچھ بدبدانے لگا, ساتھ ہی وہ خوفزدہ نظروں سے چاروں طرف دیکھتا بھی جا رہا تھا. کیوں, کیا بات ہے؟ کمی نے پوچھا. کچھ نہیں. وہ سالہ, کون کس کی بات کر رہے ہو؟ کسی کی نہیں, بس یہ سمجھ لیجئے کہ اگر کبھی کوئی مردود آپ کو میری طرف سے بہکانے کی کوشش کرے تو اس کو بالکل جھوٹا سمجھیے گا. کون بہکانے کی کوشش کرے گا؟ ہے ایک, وہ ضرور آ کودے گا ہمارے بیچ, خدا اسے غارت کرے. دوست بنتا ہے سالہ. کوئی دوست ہے تمہارا؟ جی ہاں ہے, تو دوست ہی, لیکن طرفداری کرتا ہے میری بیوی کی. تو بیوی کا بھی دوست ہوگا. گلا دبا دوں سالے کا اگر یہ معلوم ہو جائے کہ بیوی کا بھی دوست ہے. تو وہ مجھے بہکانے کی کوشش کرے گا اس لیے کہ تمہاری بیوی کا طرفدار ہے. ہاں ہاں یہی بات ہے. کیا نام ہے اس کا؟ حمید, ساجد حمید. قاسم نے آگے جھک کر رازدارانہ لہجے میں کہا. محکمہ سراغ رسانی میں ہے, کرنل فریدی والا حمید. مجھے اس سے ضرور ملاؤ, میں دیکھوں گی کہ وہ مجھے کیوں کر بہکا سکتا ہے. ارے ہرگز نہیں, ہرگز نہیں, قاسم منہ پیٹتا ہوا بولا. وہ بہکا دے گا کسی نہ کسی طرح. میں اتنے کچے کانوں کی نہیں ہوں, اب تو ضرور ملاؤ اس سے. میں خود ہی الو کا پٹھا ہوں, قاسم جھنجھلا گیا. ارے ارے ٹھیک ہے, میں خود ہی اپنی تقدیر پھوڑا کرتا ہوں. اچھا چلو اٹھو. وہ اس دوران میں بل کی قیمت ادا کر چکے تھے. دونوں ہال سے نکل کر کمپاؤنڈ میں آئے. کمی نے تجویز پیش کی تھی کہ قاسم اپنی گاڑی وہیں چھوڑ دے. کوئی بات نہیں, میں آپ کی گاڑی میں چلوں گا, اس نے احمقانہ انداز میں ہنس کر کہا. قاسم شاید مسلسل حمید کے بارے میں سوچے جا رہا تھا کیونکہ گاڑی میں بیٹھتے وقت وہ بڑبڑایا. اچھا بیٹا دیکھتا ہوں کیا کر لیتے ہو, میں نے خود ہی بتا دیا. کیا مطلب؟ میں نہیں سمجھی. ارے بس کیا بتاؤں, زبان پر قابو نہیں ہے. جو کچھ سوچتا ہوں زبان سے بھی نکل جاتا ہے. گاڑی چل پڑی. قاسم کو اس نے پچھلی سیٹ پر بٹھایا تھا. ये सफर 10 मिनट बाद खत्म हुआ था। गाड़ी एक जगह रोकी गई थी। औरत ने नीचे उतरकर कासिम के लिए दरवाजा खोला था। फिर वो उसके साथ एक बड़े खूबसूरत हट में दाखिल हुआ था। ये मेरा स्टूडियो है, औरत बोली। ये तो जन्नत है। मुझे खुशी है कि तुम्हें पसंद आया। अच्छा तुम ये तस्वीर देखो, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हैं आप? जरा घर तक जाऊंगी। घर तक तो क्या, ये सिर्फ स्टूडियो है, यहाँ रहती नहीं हूँ। तो मैं यहाँ बिल्कुल अकेला रहूँगा। ओहो, तो क्या तुम डरते हो? हरगिज नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। अच्छा तो मैं अभी आई। वो उसे हट में छोड़कर फिर अपनी गाड़ी में आ बैठी। इसके बाद वो तेजी से उस इमारत में पहुंची जहां से मेकअप करके आर लक्ष्मी गई थी। वो जल्दी में मालूम होती थी। उसने फोन पर किसी के नंबर डायल किए और माउस पीस में बोली, फौरन यहां आओ। और रिसीवर रखकर मेज ही के करीब खड़ी कुछ सोचती रही। थोड़ी देर बाद किसी ने बाहर से कॉल बेल का बटन दबाया था और इमारत के किसी करीबी हिस्से में घंटे की आवाज गूंजी थी। वो तेज कदमों से चलती हुई सदर दरवाजे पर पहुंची और हैंडल घुमाकर दरवाजा खोला। पीटर मिचकोफ मुअद्दबाना अंदाज में बाहर खड़ा था। अंदर आ जाओ कहती हुई वो पीछे हट गई। पीटर मिचकोफ पहले किसी कदर खम हुआ था, फिर उसने दरवाजे के अंदर कदम रखा था। वो उसी कमरे में आए जिससे कुछ देर पहले फोन किया गया था। औरत बैठ गई, लेकिन उसने पीटर से बैठने को ना कहा। वो मुअद्दबाना अंदाज में हाथ बांधे खड़ा रहा। वो मोटा आदमी स्टूडियो में मौजूद है, औरत ने उसकी तरफ देखे बगैर कहा। तो फिर क्या हुक्म है मादाम? ये उन दोनों से बहुत करीबी ताल्लुकात रखता है। मैं चाहती हूँ कि अब इस पर तजुर्बा किया जाए। ये मेरा आखिरी हरबा होगा मादाम। इसके लिए 6 माह दरकार होंगे। परवाह मत करो और सुनो, मैं इस कहानी से मुतमईन नहीं हूँ। किस कहानी से मादाम? जनरल कादरी वाली कहानी, वो पुरतफक्कर लहजे में बोली। बहरहाल मोटे आदमी को काबू में रखना है, इस सिलसिले में वही हमारे काम आ सकेगा। बहुत बेहतर मादाम, कोई नई इतला? इस झील को नेवी के हवाले कर दिया गया है। वो लोग बड़ी तेजी से उसके गिर्द सड़क तामीर कर रहे हैं। ऐसा इंतजाम हो रहा है कि वहाँ परिंदा भी पर ना मार सके। औरत जहरीले अंदाज में हंसी, लेकिन कुछ बोली नहीं। और हाँ मादाम, एक इतला और भी है। क्या है? रुक रुक कर बातें ना किया करो। वो झिझला गई। फरीदी की कोठी मिलिट्री के नरगे में है, उसका असिस्टेंट भी गायब हो गया। इन फजूलियात में ना पड़ो, लेकिन मादाम खामोश रहो और सुनो। वो हाथ उठाकर बोली, मैडोना को यहाँ भेज दो, अब वो मेरा रोल अदा करेगी। वो मेरी ही तरह रवानी से उर्दू बोल सकती है। फिर उसने पीटर मिचकोफ को बताना शुरू किया कि मोटे आदमी को वो किस तरह राह पर लाई है। लेकिन ये सब क्यों मादाम? मिचकोफ ने उसके खामोश होते हुए पूछा। मुझे यकीन है कि उन दोनों में से किसी ने भी कासिम के साथ किसी अजनबी औरत को देखा तो वो इसका ताकुब शुरू कर देगा। इसके अलावा मेरी दानिश में फिलहाल उन पर हाथ डालने की और कोई तदबीर नहीं। पहले मेरी स्कीम कुछ और थी, लेकिन अब मैं इस लाइन पर काम करूंगी। पिछली स्कीम वाले तजुर्बे में ये आदमी जाया हो जाएगा। मैं नहीं समझा, ज़हनी तौर पर हमारे काम का नहीं रहेगा। बहुत मालदार आदमी है, हो सकता है हमें माली जरूरत भी पेश आए। मुनासिब है मादाम, बस जाओ और मैडोना को भेज दो। पीटर मिचकोफ चला गया और 15 या 20 मिनट बाद एक लड़की उस कमरे में दाखिल हुई जो उसी औरत का सा कदोकामत और जिसामत रखती थी। चेहरे की बनावट भी ऐसी ही थी कि उसका मेकअप आसानी हो सकता। वो उसे हिदायत देती रही और वो उसे बेगौर सुनती रही। फिर कुछ देर के लिए खामोशी तारी हो गई। लड़की किसी गहरी सोच में थी। क्या तू मेरी बात नहीं समझ सकी? औरत ने पूछा। मैं समझ गई मादाम, लेकिन आप किसी मुतरनम आवाज कहाँ से लाऊंगी? तू इसकी फिक्र ना कर, वो बिल्कुल गावदी है, तेरी आवाज की तरफ ध्यान भी ना देगा। फरिश्ती कासिम ने कई बार वहाँ की तस्वीर देखी और मुसलसल बोर होता रहा। उसे भला तस्वीर से क्या दिलचस्पी हो सकती थी? वो तो उस नेमत गैर मुतरक्कबा के लिए यहाँ चला आया था, वो जो खुद ब खुद उस पर मेहरबान हो गई थी। तस्वीर से उलझन बढ़ी तो उनकी तरफ से जहन हटाने की कोशिश करने लगा। ऐसे मौके पर वो अमूमन ब आवाज बुलंद सोचने लगता था, मैं वाकई अकलमंद होता जा रहा हूँ। वो बेटा मुझे इसकी धमकी तो दिया करते थे कि जाकर अपनी आपा जान से जड़ देंगे, अब आकर जड़े, मैंने तो जड़ ही काट दी। खुद ही बता दिया कि मैं शादीशुदा हूँ, हा 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 हा, और वो भी ऐसी आशिक हुई है कि कुछ परवाह नहीं, वारे अल्लाह मियाँ थैंक यू, लेकिन अब तक पलटी क्यों नहीं। ये बड़ी अच्छी बात है कि उसके माँ बाप नहीं, वरना साले घपला कर देते। लोंडियों के माँ बाप तो होने ही ना चाहिए, और मेरा भी ना होता तो कितना अच्छा था। फिर वो खामोश हो गया। अब वो सोच रहा था कि क्यों न सदर दरवाजे के करीब रहकर उसका इंतजार करे। तकरीबन आधा घंटा गुजर गया, लेकिन वो वापस ना आई, और कासिम ने सोचना शुरू किया कि कहीं कोई घपला ना हो। लेकिन ठीक उसी वक्त बाहर से किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आई, और वो दरवाजा खोलकर बरामदे में निकल आया। तारों की छांव में उसने किसी को गाड़ी से उतरते देखा। वो खरामा खरामा चली आ रही थी। दिल बहुत जोर से धड़का। बरामदे में पहुंचकर वो छिटकी ही थी कि कासिम बोल पड़ा, मैं हूँ। ओ अंदर चलिए, कासिम बौखलाए हुए अंदाज में मुड़ा था, और फिर तस्वीर वाले कमरे में पहुंचकर ही दम लिया था। इस बार वो साड़ी की बजाय जीन और जैकेट में आई थी। कासिम उसे देखता ही रह गया। आपकी गाड़ी यहीं मंगवाए लेती हूँ, कुंजी दे दीजिए। जरूर जरूर, ये लीजिए, कासिम ने जेब से अग्निशन की निकाल कर उसके हवाले की। फिर शायद वो कुंजी किसी और के सुपुर्द करने बाहर गई थी और फौरन ही वापस आ गई थी। ये जगह पसंद आई, उसने कासिम से पूछा। बड़ी खूबसूरत जगह है, वाह वाह, क्या आप यहाँ हमेशा रहना पसंद करेंगे? क्यों नहीं, लेकिन मेरी ऐसी किस्मत कहाँ। क्यों, क्या आप मेरी चीज को अपनी नहीं समझते, वो लगावट के साथ बोली। ये बात नहीं, कासिम का दिल भर आया। फिर क्यों कही थी ये बात? कुछ नहीं, आप फिक्र ना कीजिए, मैं जब बहुत खुश होता हूँ तो रोने लगता हूँ। ये तो फलसफियाना हरकत हुई। बस हो जाती है, मैं मोहब्बत का भूखा हूँ। भूखा कहते वक्त उसे अचानक महसूस हुआ जैसे उसे फिर भूख लग रही हो। ये तो बहुत बुरा हुआ, ये क्या सोचेगी। फिर ख्याल आया कि वो उसके खाने ही की अदा पर तो आशिक हुई थी, और उसकी एक ऐसी तस्वीर बनाना चाहती थी जिसमें वो खाना खा रहा हो। बस खाने के ख्याल पर जो जहनी रो बहकी, तो ये भी भूल गया कि पहले क्या बातें करता रहा था। लिहाजा दो चार बार मुँह चलाकर बोला, मंगवाइए खाना और मेरी तस्वीर बनाना शुरू कर दीजिए। ऐसी भी क्या जल्दी, अभी तो हम मेल मोहब्बत बढ़ाएंगे। बढ़ाइए, वो मुर्दा सी आवाज में बोला, और दफतन बहुत ज्यादा मुजमहल नजर आने लगा। क्यों, क्या बात है, वो उसे घूरती हुई बोली। यक बयक आप मुरझा क्यों गए, भूख लग रही है। ओहो, कुछ ही देर पहले तो इतना खा चुके हो। इस रिमार्क पर कासिम भुन्ना गया और तड़ से बोला, देखिए अगर मुझसे मोहब्बत करनी है तो मेरे खाने वाने में घपला करने की कोशिश ना कीजिएगा। अच्छा सरकार, गलती हुई, माफ कर दीजिए, यहाँ खाने के लिए कुछ नहीं। आपकी गाड़ी आ जाए तो फिर कहीं चलते हैं। आपको मेरी ये बात बुरी तो नहीं लगी, कासिम ने बौखलाकर पूछा। पहले वो यूं ही रो में बोलता चला गया था। बिल्कुल नहीं, कासिम ने मामले को मजीद बराबर करने के लिए कहा, मेरी बीवी मेरे खाने पीने से जलती है। तब तो वाकई वो आपसे मोहब्बत नहीं करती, मुझे तो बेतहाशा खाने वाले मर्द बहुत अच्छे लगते हैं। सच कहता हूँ, आप फरिश्ती हैं, कासिम ने कहा और सोचने लगा शायद वो गलत बोल गया है, लेकिन औरत फरिश्ता क्यों कर हो सकती है। फरिश्ता की मादा फरिश्ती तो कहलाएगी, और सब चलता है। आप मेरी मालूमात में इजाफा कर रहे हैं, फरिश्ता की तानीस मेरे इलम में नहीं थी। नहीं भी है तो होनी चाहिए, फिर औरत को क्या कहेंगे। औरत को औरत के अलावा और कुछ कहना ही ना चाहिए। जी अच्छा, कासिम बड़ी मासूमियत के साथ बोला, अब नहीं कहूँगा। आप वाकई बहुत प्यारे हैं, उसने कहा। कासिम शर्मा कर अपने कोट का दामन मसलने लगा। फिर खामोशी छा गई। कासिम की समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस किस्म की गुफ्तगू करे। दफतन वो खुद ही बोली, क्या आपको अपनी बीवी अच्छी नहीं लगती, जहर लगती है वो आफत की पुड़िया। इतनी नापसंद थी तो शादी ही क्यों की थी आपने। लो ओ सुनो, मैंने की थी। फिर, अरे मेरे जालिम बाप ने की थी। आप बहुत अच्छी हैं कि आपके बाप नहीं है। जी हाँ, वो हंस पड़ी। ओहो तौबा, मैंने क्या कह दिया। कोई बात नहीं, मैं भी आप ही की तरह बहुत ज्यादा आजाद ख्याल हूँ, उसने कहा और फिर दरवाजे की तरफ बढ़ती चली गई। कासिम ने भी साथ जाना चाहा था, लेकिन उसने मुड़कर उसे वहीं रुकने का इशारा किया और कमरे से चली गई। क्या मुसीबत है, कासिम बड़बड़ाया, ये आखिर चाहती क्या है। वो जल्द ही पलट आई और मुस्कुराकर बोली, आपकी गाड़ी आ गई। हूँ, अच्छा एक बात कहूँ, आपको बुरा तो नहीं लगेगा। कहिए, बुरा लगेगा भी तो मैं उसे अच्छा ही महसूस करने की कोशिश करूँगी। आप इतनी अंग्रेजी क्यों लगती हैं? ओहो, मैं बहुत ज्यादा रही हूँ इंग्लिस्तान में, मेरे डैडी वहाँ तिजारत करते थे। और एक बात और, मैं आपको कमी नहीं कहना चाहता।
क्यों भला, ये क्या बात हुई?
वो दरअसल मैं कीमे की तली गोलियों को कमी कहता हूँ, कासिम ने कहा और किसी नदीदे से बच्चे की तरह मुंह चलाने लगा। ओहो, आप भूखे हैं, मैं तो भूल ही गई थी, चलिए कहीं चलते हैं। जरूर जरूर, कासिम इससे पहले ही दरवाजे की तरफ बढ़ता हुआ बोला। कुछ देर बाद वो अपनी अम्पाला ड्राइव कर रहा था और लड़की उसके करीब ही बैठी हुई थी। कासिम सोच रहा था कि अब देखने वाले देखकर जलेंगे, हाय जीन और जैकेट में कैसी लग रही है, खुदा करे वो बेटा भी कहीं मिल जाए तो मजा आ जाए, अब मेरा क्या बिगाड़ सकेंगे, ऐसा जलाऊं के बस। हाँ तो आपको मेरा नाम पसंद नहीं, लड़की बोली, तो आप ही कोई नाम दे दीजिए। मैं आपको नौशाबा कहना चाहता हूँ, बड़ा तगड़ा नाम है। जरूर कहिए, लेकिन हम कहाँ जा रहे हैं? नया गरा, बड़ी शानदार जगह है, मुझे बहुत पसंद है, आपका टेस्ट लाजवाब है। ही 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 ही। अरे मैं क्या, इम्पाला तेज रफ्तारी से रास्ता तय करती रही। हमीद छुपता फिर रहा था और ये कोई ऐसा दुश्वार मसला भी नहीं था कि उसे किसी किस्म की उलझन का सामना करना पड़ता। फरीदी की कई ऐसी मकीन गाहें थी जिनका इलम इन दोनों के अलावा और किसी को नहीं था। उलझन सिर्फ एक थी, वो ये कि अभी तक खुद उसे फरीदी का सुराग नहीं मिल सका था। बहुत ही महसूस नंबरों पर भी फोन करके देख चुका था, लेकिन नाकामी ही हुई थी। इस वक्त वो चीथम रोड के इस्फहानी वल्ला के एक शानदार फ्लैट में मुकीम था और यहाँ पेट भरने के अलावा और हर किस्म की आसाइशें मयसर थीं, लिहाजा पेट भरने के लिए बाहर निकलना पड़ा। हालात ऐसे थे कि रेडीमेड मेकअप से काम न चलता, कुछ देर आईने के सामने मेहनत करनी पड़ी। उसके बाद वो सोचने लगा कि दिन भर की कोफ्त और बोरियत कहाँ दूर की जाए। सोचते सोचते नयागरा की ठहरी। ये जगह शहर से दूर थी, इसलिए वहाँ वो इत्मीनान से वक्त गुजार सकता था। इस्फहानी वल्ला के गैराज में उनकी एक जीप भी रहती थी। हमीद ने कुंजी जेब से निकाली और नयागरा की तरफ रवाना हो गया। रात बड़ी खुशगवार थी। थोड़ी ही देर बाद वो शहर के बाहर खुली हवा में पहुंच गया। रात भर की कोफ्त के मुतालिक वो अब कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। जीप तेज रफ्तारी से नयागरा वाली सड़क पर दौड़ती रही। नयागरा पहुंचकर गाड़ियों की तादाद से उसने अंदाजा लगाया कि अंदर बहुत भीड़ होगी। डाइनिंग हॉल में आया, कोई मेज खाली न दिखाई दी। वो काउंटर के करीब ही रुक गया था। इतने में कुछ और लोग भी उसी के करीब आ खड़े हुए। तेज किस्म की खुशबू हमीद का जहन सहला गई। उसने बाई जानिब देखा और दम बखुद रह गया। वो ऐसी ही दिलकश लड़की थी, जीन और जैकेट में, और भी दिलकश मालूम हो रही थी। लेकिन ये कासिम, उसके बराबर ही कासिम नजर आया और वो हंस हंस कर उससे बातें कर रही थी। दिल में सांप लौट गया, लेकिन मिल बैठने की क्या सूरत होगी, उसने सोचा, वो तो मेकअप में है। दफतन कासिम ने लड़की से कहा, यहाँ तो सारी मेजें घिरी हुई हैं, चलिए कहीं और चलें। कहीं और चलने में बहुत वक्त सर्फ होगा, चलिए रिक्रिएशन हॉल में चलें। हमीद तेजी से रिक्रिएशन हॉल की तरफ झपटा। अजीब इत्तेफाक था कि जिस गैलरी में वो दाखिल हुआ था और उनके भी वहीं आने की तवक्को की जा सकती थी, उसमें सिर्फ एक ही मेज खाली नजर आया। हमीद तेजी से उसकी तरफ बढ़ता चला गया। करीब पहुंचा लेकिन बैठा नहीं, बल्कि दीवार से लगकर खड़ा हो गया। वो दोनों भी उसी गैलरी में दाखिल हुए और उन्होंने भी उसी मेज को ताड़ा। अब वो आहिस्ता आहिस्ता टहलते हुए उस मेज की तरफ बढ़ रहे थे। जैसे ही करीब पहुंचे, हमीद ने बड़ी फुर्ती से उस पर कब्जा जमा लिया। अरे रे अगे, कासिम आंखें निकाल कर हकलाया। लड़की के चेहरे पर शर्मिंदगी के आसार नजर आए। हमीद दूसरी तरफ मतवज्जो हो गया था। लड़की ने मुड़ना चाहा, लेकिन कासिम उसका बाजू पकड़कर रोकता हुआ बोला, ठहरिए, पहले हमने देखा था। नहीं नहीं कहीं और देखते हैं, लड़की बोली और हमीद चौंकने की एक्टिंग करता हुआ उनकी तरफ मतवज्जो हो गया। जिनाब हम आ रहे थे यहाँ, कासिम आंखें निकाल कर बोला। तो तशरीफ रखिए, हमीद ने उठकर बड़ी शाइस्तगी से कहा। नहीं शुक्रिया, लड़की बोली, अगर आप तनहा बैठना चाहें तो मैं ये मेज छोड़ भी सकता हूँ, वैसे दूसरी गैलरी में भी कोई खाली मेज नहीं है, मैंने शाम ही से रिजर्व कराई थी। क्या ख्याल है, लड़की ने कासिम से पूछा। हम अकेले बैठेंगे, ये बुरी बात है डियर, ये बहुत अच्छे आदमी मालूम होते हैं, इन्हें आदमी कौन कहेगा, कासिम बुरा सा मुंह बनाकर बोला, क्योंकि हमीद उस मेकअप में बड़ा स्मार्ट लग रहा था। जानवर ही समझकर मेरी दावत कबूल कर लीजिए जिनाब, वरना मैं तो मेज छोड़ने पर भी तैयार हूँ। चलो बैठ जाओ, लड़की ने कासिम का हाथ पकड़कर खींचते हुए कहा। एक शरीफ आदमी हमसे इस्तेदा कर रहा है। शरीफ, कासिम ने बुरा सा मुंह बनाकर हमीद को घूरते हुए जहरीले लहजे में कहा और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गया। लड़की उसके बराबर बैठी थी और फिर हमीद भी बैठ गया था। ऑर्केस्ट्रा मध्यम सुरम में जाज बजा रहा था। अभी रक्स के लिए मौसीकी नहीं शुरू हुई थी, हो सकता था कि इससे कबल कुछ राउंड हो चुके हों। उनके बैठ जाने के बाद हमीद ने उनसे बेताल्लुकी का मुजाहरा करना शुरू कर दिया था, दूसरी तरफ मतवज्जो हो गया था। ऐसा लगता था जैसे वो कोई गैर मुल्की जबान बोल रहे हों, उनकी जबानों से निकले हुए अल्फाज उसके लिए कोई मायनी ही ना रखते हों। दफतन लड़की ने उसे मुखातिब करके कहा, क्या आप हमारी दावत कबूल करेंगे? जैसी आपकी मर्जी, मैं तो बेउज्जत आदमी हूँ, हमीद ने मुस्कुराकर बड़ी शाइस्तगी से कहा। फिर उसने कनखियों से कासिम की तरफ देखा, जो उसे चले कटे अंदाज में मुसलसल घूरे जा रहा था। उसके जवाब पर वो होंठों ही होंठों में कुछ बिड़बड़ाने भी लगा था। तुम क्या खाओगे डियर, लड़की ने कासिम से पूछा। जो मिल जाए, कासिम ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया। मिलने को तो यहाँ हाथी के सिरी पाए भी मिल सकते हैं, हमीद बोला। जी क्या फरमाया, हाथी के सिरी पाए? तो गोया मैं हाथी के सिरी पाए खाऊंगा, हमीद सुनी अनसुनी करके लड़की से बोला। पिछले साल मैंने काहिरा में ऊंट के सिरी पाए खाए थे। हमें जाओ, मच्छरों कैसे हाथ पांव लिए फिरते हो, ऊंट के सिरी पाए खाए थे हों? आप कभी काहिरा गई हैं, हमीद ने फिर उसे नजरअंदाज करके लड़की से पूछा। बिल्कुल बिल्कुल, और हमें कहीं भी ऊंट के सिरी पाए नहीं मिले थे, ये आदमी झूठा है, कासिम ने बड़े जोश खरोश के साथ कहा। हमें किसी की दिल आजारी ना करनी चाहिए डियर। खैर जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं नहीं बोलूँगा। आप जरूर बोलिए जिनाब, आपका बोलना कानों को आवाजों का सर्कस महसूस होता है, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। क्या मतलब हुआ इस बात का, कासिम ने आंखें निकाली। डियर, इन बातों में उलझने से बेहतर ये होगा कि तुम काउंटर पर जाकर आर्डर लिखवा आओ, मेज नंबर का हवाला दे देना। पता नहीं क्यों दूर दूर तक कोई वेटर नहीं दिखाई देता, लड़की ने कासिम से कहा। कासिम का हुलिया फिर बिगड़ गया, ऐसा मालूम होता था जैसे उसे लड़की का मशवरा ग्रां गुजरा हो। जी हाँ ये तो है, हमीद बोला, रिक्रिएशन हॉल में खाना तलब करने के लिए काउंटर ही पर आर्डर दर्ज कराना पड़ता है, यहाँ वेटर सिर्फ मशरूबात के आर्डर लेते हैं। हम मशरूबात ही खा लेंगे, कासिम उसे घूरता हुआ बोला। मशरूबात से मुराद पीने की चीजें हैं, हमीद ने बड़ी शाइस्तगी से कहा। बड़े काबिल की दुम ना बनो, हमने भी घास नहीं खोदी। हाँ तुम झगड़ते हो, मैं जा रही हूँ, लड़की उठती हुई बोली। कहाँ? आर्डर बुक कराने। ठीक है, कासिम ने पुरइत्मीनान लहजे में कहा। लड़की उठकर चली गई और कासिम ने फिर हमीद को घूरना शुरू कर दिया। आप मुझसे कुछ नाराज मालूम होते हैं जिनाब, हमीद मुसमुसी सूरत बनाकर बोला। अमें तुम खुदाई फौजदार हो, खामखा सर पर सवार हो गए, जान न पहचान खाला जान, आप कुछ भूल रहे हैं, ठेंगे से तुम खामोश रहो। दफतन कोई सख्त चीज हमीद के बाएं पहलू में चुभी और वो बेसाख्ता चौंक कर मुड़ा। एक आदमी उसे लगा खड़ा था और उसकी आंखों में देखे जा रहा था। खामोशी से उठ चलो, उसने आहिस्ता से कहा। मेरी पेंट की जेब में रिवॉल्वर है, उसका दाहिना हाथ पतलून की जेब में था और हमीद के पहलू में चुभने वाली चीज रिवॉल्वर ही की नाल हो सकती थी। हमीद खामोशी से उठ गया, वो दोनों नकासी के दरवाजे की तरफ बढ़े और अजनबी बोला, रिवॉल्वर बेआवाज है और मैं जेब से भी सही निशाना ले सकता हूँ, लिहाजा चुपचाप चलते रहो। इसी तरह चलते हुए वो इमारत से बाहर निकल आए। अब अजनबी हमीद को पार्किंग शेड की तरफ ले जा रहा था। सैकड़ों रूप कैप्टन हमीद को फौरी तौर पर सोचना पड़ा। आलिया नरीमान अच्छी तरह वाकिफ थी कि उसके और कासिम के दरमियान इस नौयत की छेड़छाड़ जारी ही रहती थी। वो आलिया नरीमान जिसकी तस्वीर देखकर फरीदी ने पिछले सारे मामलात की अहमियत ही से इनकार कर दिया था। हर चंद के उसने उसे इस पुरानी शनासाई के बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन ये जरूर कहता रहा था कि अब तक जो कुछ हुआ है इस पर यकीन ना रखना चाहिए। हमीद पूरी पूरी होशियारी से चल रहा था। अजनबी पर तो जाहिर कर रहा था कि जैसे वो उससे खायफ हो, लेकिन हकीकतन इस ताक में था कि उसे जरा सा भी गाफिल पाए और हमला कर बैठे। उसने एक गाड़ी के करीब रुकने को कहा और बोला, चालाक बनने की कोशिश करोगे तो फायर कर दूंगा, खामोशी से बैठ जाओ, ड्राइव भी तुम ही करोगे। बड़ी अजीब सिचुएशन थी। हंगामा बर्पा करता तो खुद उसके भी डर लिए जाने के इम्कान थे। फरीदी से भी अभी तक मुलाकात नहीं हुई थी कि आइंदा के लिए राह अमल का तायुन हो सकता। वो दांत पीसता हुआ स्टीयरिंग के सामने बैठ गया। कुंजी अग्निशन में मौजूद थी, उसने फौरन ही इंजन स्टार्ट कर दिया। मकसद ये था कि वो उस आदमी को गाड़ी में ना बैठने दे, लेकिन वो तो गियर बदलने से पहले ही पिछला दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया था। एक बार फिर आगाह कर रहा हूँ कि तेजी दिखाने की कोशिश मत करना, वो पिछली सीट से गुर्राया। कान न खाओ हमीद, चिल्ला कर बोला, तुम पता नहीं कौन हो और क्या चाहते हो। यकीन करो मैं तुम्हें कोई शरीफ आदमी नहीं समझता, पिछली सीट से आवाज आई। साफ जाहिर होता है कि तुम पहले भी ऐसे हालात से गुजर चुके हो। कोई सीधा साधा आदमी समझ ही नहीं सकता कि पतलून की जेब से इस्तेमाल किए जाने वाला रिवॉल्वर क्या होता है। समझा, तुम पंटू के आदमी मालूम होते हो। हमीद ने पहले कई बार का आजमाया हुआ नुस्खा यहाँ भी आजमाने की कोशिश की। अच्छा तो फिर, लेकिन पिंटू को मालूम होना चाहिए कि अब मेरा रुस्तम जी से कोई ताल्लुक नहीं। पिछले दिनों उसका जो सोना कस्टम वालों ने पकड़ा है, उसके सिलसिले में उसने मुझ पर और शकूर पर इल्जाम आयद किए थे। मैं सुन रहा हूँ, तुम गाड़ी बेक करके शेड से निकालो। निकाल रहा हूँ और अब मैं तुमसे जरा बराबर भी खाइब नहीं हूँ। मैं खुद ही पिंटू से मिलना चाहता था। रुस्तम जी के खिलाफ मेरे सीने में लावा उबल रहा है। क्यों, आखिर क्या बात हो गई? हाँ, गेट से निकालकर बाईं जानिब चल पड़ो। हमीद ने अपना निचला होंठ दांतों में दबाए हुए उसे दिल ही दिल में एक गंदी सी गाली दी और बताई हुई राह पर गाड़ी को लगाता हुआ बोला, मैं बयान नहीं कर सकता कि रुस्तम जी कितना बड़ा सुअर है। 4 साल पहले की बात है कि हम दोनों ही फुटपाथों पर रातें गुजारा करते थे और आज वो मुझे कुत्तों से भी बदतर समझता है। अपने हथकंडों से वो सारे ही दोस्तों का आका बन बैठा, कुत्ता थू। अब मैं पिंटू को बता सकता हूँ कि रुस्तम जी मुआहिदों के बावजूद भी उसके खिलाफ क्या कुछ नहीं करता रहा। अगले चौराहे से दाहिनी जानिब मोड़ लेना, पिछली सीट से आवाज आई। हमीद इस बार बुलंद आवाज में उसे गाली देते देते रह गया। चौराहे से गुजरकर उसने बताई हुई सड़क पर गाड़ी मोड़ दी। बोलते रहो, तुम खामोश क्यों हो गए? पिछली सीट से आवाज आई। बस तुम मुझे पिंटू के सामने पेश करो, वहीं बातें होंगी। अच्छी बात है, पिछली सीट से आवाज आई और हमीद ने महसूस किया कि वो सड़क उसे साहिल समंदर की तरफ ले जा रही है। जरा तेज चलो, अजनबी ने कुछ देर बाद कहा। सड़क सुनसान थी। हमीद ने एक्सीलरेटर पर दबाव डाला और गाड़ी हवा से बातें करने लगी। किसी तरह कुछ कर गुजरने का मौका नहीं मिल रहा था। कुछ देर बाद उसने ऊंची आवाज में कहा, मैं पेशाब करूंगा। वाकई जियाले हो, बहुत देर बाद जरूरत महसूस की, पुश्त से तंजिया हंसी के साथ कहा गया। अच्छी बात है, हमीद भुनाकर बोला, मैं गाड़ी रोक रहा हूँ, तुम फायर कर दो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं फायर नहीं करूंगा। क्या हथापाई करना चाहते हो? कुछ भी हो, हमीद ने रफ्तार कम करके ब्रेक लगाए और इंजन बंद कर दिया। और अब शोल्डर होलस्टर से रिवॉल्वर निकाल लो, अजनबी मज़ेहका उड़ाने वाले लहजे में बोला और उसने अंदर की लाइट का स्विच ऑन कर दिया। वो बड़े इत्मीनान से खाली हाथ बैठा था। अब हमीद ने उसका बिलतफसील जायजा लिया। उसकी पेशानी पर जख्म का गहरा निशान था। चेहरे से बेपनाह तवानाई जाहिर होती थी। शाने चौड़े थे, गनी भौंओं के नीचे सुर्ख सुर्ख आंखें खौफनाक लगती थीं। वो उसे घूरे जा रहा था और हमीद को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके जिस्म में जान ही ना रही हो। बोलो क्या इरादा है अजनबी गुर्राया, तो तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? अच्छा तो सुनो, तुम मादाम ओलिविया नॉर्मन के कैदी हो। मैं किसी ओलिविया नॉर्मन को नहीं जानता, हमीद ने मुतहयराना लहजा इख्तियार करने की कोशिश की। लेकिन वो तुम्हें जानती है, अजनबी ने कहा और जेब से कोई चीज निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाता हुआ बोला, ये देखो ये है उसका सबूत। हमीद गैर इरादी तौर पर आगे झुका और अजनबी का बड़ा हुआ हाथ उसकी नाक से टकरा गया। फिर तो ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने उसकी नाक में मिर्चों का बारीक सफूफ झोंक दिया हो। खोपड़ी जल उठी और सीने में आग सी लग गई, फिर उसका दम घुटने लगा। उसके बाद का उसे होश ही नहीं कि फिर क्या हुआ था।
मौजूद समय इसी के साथ ये पाठ अपने अख्ताम को पहुँचा।